मिथिला बता रहे हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानी, कि हम जो जीवात्माएं हैं हम लोग अन्न पर आधारित हैं, और अन्न जो है वो पर्जन्य अर्थात वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ से, और यज्ञ हमारे नियत कर्मों से। तो भगवान ने ये जो श्रृंखला बताई, अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के श्लोक में भगवान ने पिछले श्लोक में अंत कहां किया था? यज्ञात कर्म समुद्भव, कि जो यज्ञ है वो कर्म से या नियत कर्मों से होता है। तो अब कर्म को लेते हुए आज के श्लोक में भगवान आगे बता रहे हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं। तो भगवान आगे बता रहे हैं कि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, वो जो कर्म नियत कर्म जिसे भगवान ने पिछले श्लोक में कहा है कि यज्ञ है, ऐसे नियत कर्म कहां वर्णित हैं? हमारे वेदों में। तो वैदिक शास्त्रों में ऐसे नियत कर्म वर्णित हैं, भगवान बोल रहे हैं। ब्रह्म उद्भवम विद्धि, ये सारी जो विधियां हैं ये ब्रह्म उद्भवम अर्थात शब्द ब्रह्म, जिसे शास्त्र या शास्त्र को शब्द ब्रह्म भी कहते हैं, क्योंकि भगवान के मुख से निकले हुए शब्द वो है शास्त्र। शास्त्र है क्या? भगवान के मुख से निकले हुए शब्द। तो इसलिए यहां पर ब्रह्म उद्भवम विद्धि। तो कोई पूछे कि फिर ये जो शास्त्र हैं ये शब्दों से केवल शास्त्र बना हुआ है? कोई भी शास्त्र आप लो, शब्दों से शास्त्र बने हुए, या फिर कोई भी पुस्तक आप लो तो वाक्यों, और वाक्यों हम बोलते हैं कि शब्दों से वाक्य बने हैं, वाक्यों से अध्याय, अध्याय से पुस्तक, तो शब्द कहां से बने? अक्षर। तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्माक्षर सम उद्भवम, कि वो जो शब्द ब्रह्म है उसकी उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म से हुई। तो दो ब्रह्म यहां बता रहे हैं भगवान, एक तो शब्द ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म। ज्यादा कठिन नहीं समझना, कंफ्यूज मत होइए आप। सिंपल लैंग्वेज में शब्द बनते हैं अक्षरों से, वर्ड्स आर मेड फ्रॉम सिलेबल्स। तो भगवान ये बता रहे हैं कि यहां तक कि केवल जो शास्त्रों में शब्द दिए गए हैं मेरे द्वारा, न केवल वो मैं स्वयं हूं, बल्कि एक अक्षर भी यदि कोई ठीक प्रकार से जान लेता है, अर्थात भगवद गीता कि जितने अध्याय हैं उन अध्यायों में जितने श्लोक हैं, श्लोकों में जितनी लाइनें हैं, लाइनों में जितने शब्द हैं, शब्दों में जितने अक्षर हैं, यदि कोई अक्षर को भी भगवद गीता के अक्षर को भी समझ ले या उसका भी उच्चारण करता रहे तो उसमें भी उसका शुद्धिकरण प्रारंभ हो जाता है, तो वो भी अक्षर ब्रह्म भगवान कह रहे हैं। तस्मात सर्वगतम ब्रह्म, और वो सब मुझसे उद्भूत है, और मैं कौन हूं? सर्वगतम ब्रह्म। और इसके साथ साथ एक बहुत ही भगवान जो अंतिम लाइन में आज के श्लोक में कहे हैं कि सर्वगतम ब्रह्म होने के साथ साथ मैं यज्ञ प्रतिष्ठितम, तो भगवान यज्ञ को छोड़ नहीं रहे, फिर से घुमा फिरा के यज्ञ को पकड़ लिए कि अन्न वर्षा यज्ञ कर्म शास्त्र शब्द अक्षर सर्वगत ब्रह्म फिर से यज्ञ। तो बहुत ही एक सुंदर टेक्निकल एक चक्र भगवान ये दो श्लोकों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है ये दो श्लोक का जो कॉम्बिनेशन है। पूरे श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। आप लोगों को लग रहा हुआ ट्रांसलेशन तो बहुत सिंपल था, लेकिन हमारे आचार्यों ने उसका विच्छेदन कर एक एक शब्दों का कि शब्द का कनेक्शन अक्षर से क्या है या शब्द ब्रह्म का कनेक्शन अक्षर ब्रह्म से क्या है, उनका कनेक्शन भगवान से क्या है इत्यादि। तो हम यदि पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध देखें तो पिछले श्लोक की चर्चा हमने शुरुआत में की, अन्नाद भवन्ति भूतानि, कि कैसे अन्न से हम लोग सब उत्पन्न हुए और फिर अन्न की उत्पत्ति वर्षा इत्यादि। तो हमने सोचा कि ये दो श्लोक को एक स्लाइड में यदि समझना है तो हमें देखना होगा कि भगवान ने कुछ 8 बिंदुओं को लेकर ये चक्र बनाया है। इसलिए आज यहां पर आप देख रहे हो कि एक आपके सामने गोलाकार है और इसमें भगवान ने पिछले श्लोक में और आज के श्लोक दोनों को लेकर जो ये 8 बिंदु हैं और उसका कैसे कनेक्शन है भगवान बताए हैं दो श्लोकों के द्वारा। तो सबसे पहले मनुष्य शरीर, तो हम लोगों को जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो मनुष्य शरीर की उत्पत्ति भगवान ने कहा अन्न से, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से, यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्मों से। कर्मों के विषय में अब आज के श्लोक पर आ गए हम लोग, ध्यान रखिएगा कि ये जो वेद वाला बिंदु है ये आज का श्लोक प्रारंभ हो गया। तो नियत कर्म तक 3.14 था, नियत कर्म के पश्चात जो भगवान बताए हैं कि नियत कर्म कहां वर्णित है वेदों में, तो नियत कर्म की उत्पत्ति कहां से हुई है वेदों से, वेदों की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म जो कि भगवान से। तो फाइनली घूम फिर कर हम ये कह सकते हैं कि भगवान ही ये सब कुछ करा रहे हैं, मनुष्य शरीर से लेते हुए फिर भगवान तक या फिर मनुष्य शरीर तक। तो ये हम एक स्लाइड में समझ सकते हैं 3.14 और 3.15 का, दोनों का कनेक्शन क्या है, ये यज्ञ चक्र का कनेक्शन भगवान ने किस प्रकार से दिया है। अब आज के श्लोक का जो सबसे पहली लाइन है, कर्म ब्रह्मोद भवम विद्धि, कर्म को वेदों से उत्पन्न जानो। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अब 16वें अध्याय में भगवद गीता के भगवान कहते हैं कि जो वेदों को स्वीकार नहीं करते, जैसे यहां पर भगवान ने बता दिया है कि नियत कर्म को कहां से जानो, वेदों से जानो। कोई बोले कि नहीं, मेरे को तो विश्वास नहीं वेदों के ऊपर, मैं नहीं मानता वेदों को, आई डोंट बिलीव इन स्क्रिप्चर्स, तो भगवान कहते हैं यह शास्त्र विद्धिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न परामगतिम। तीन चीजें उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती यदि वो वैदिक शास्त्रों को नहीं मानता। He who discards scriptural injunctions and acts according to his own whims attains neither perfection nor happiness nor the supreme destination. और श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के ऊपर बहुत से प्रवचन दिए और बहुत से उदाहरण दिए कि वैदिक शास्त्र छोड़ दीजिए, यदि हम अपने जीवन में अपने शरीर के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो भी हम उठ नहीं सकते, बिस्तर से उठ नहीं सकते। शास्त्र तो छोड़ दीजिए, ये जो शरीर हमें प्रकृति ने दिया है ये शरीर के नियम है, और ये शरीर के नियम यदि हम पालन नहीं करेंगे तो हम पलक भी नहीं झपक सकते। देयर आर लॉज गवर्निंग हाउ टू यूज दिस बॉडी। जैसे कि जब हम सोने जाते हैं तो हम देखते हैं अपने आप हमारी पलकें बंद होती है कि नहीं, ये एक शरीर का या सोने का नियम है। ये अलग बात है कई लोग आंख खुली भी सोते हैं, मैंने एक व्यक्ति को देखा उनकी ऑलमोस्ट पूरी आंखें खुली जब सपने लेते रहे थे, उसके बाद में शायद हो सकता है कि बंद आंखों में सपने दिख नहीं रहे होंगे। तो जनरली जो लॉ है, आंखें बंद होती है जब हम सोते हैं और फिर जब हम उठते हैं तो शरीर के कितने सारे कार्य हमारे सोते समय भी, जो हमारा शरीर है वो एक सर्टन लॉ को फॉलो कर रहा है, कि ये नहीं कि हम सोए हैं तो फिर ये जो हमारा दिल है हृदय है ये बोलता है चलो मैं भी थोड़ा नींद मारता हूं, अगर वो नींद मार ले तो ये आंखें खुलेंगी नहीं फिर कभी, तो वो अपना नियम उसका चालू रहता है, अंदर श्वास हमारी चालू रहती। सोते समय लोग थोड़ा ज्यादा आवाज करके भी श्वास लेते, तो वहां से लेते हुए पूरा दिन जो हम बिताते हैं ये शरीर के साथ, उसमें कितने नियम हैं, सोना खाना चलना फिरना कितने सारे नियम हैं। तो प्रभुपाद अपने प्रवचनों में उन्होंने बताया कि शास्त्र क्या है। शास्त्र केवल ये नहीं कि बस भगवान और भगवान की भक्ति, हाँ अंततः तो शास्त्र में वो सब बताया गया है, परंतु शास्त्र इतने हैं कि प्रभुपाद कहे कि कैसे नहाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सब कुछ भी शास्त्र में बताया गया। एवरीथिंग इज मेंशनड इन अवर स्क्रिप्चर्स, व्हाट वी आर सपोज टू डू, व्हाट वी आर नॉट सपोज टू डू, इवन ऑन अ मटीरियल मंडेन प्लेटफॉर्म यहां तक बताया गया कि उसके लिए भी जब कोई शास्त्र का पालन करता है, जैसे कि आजकल वेस्ट में आयुर्वेद बहुत फेमस हो रहा है, तो आयुर्वेद जो है, हालांकि एक वेद है, ये नाम ही है आयुर्वेद, वेद है ये। अब उनको भगवान से कोई मतलब नहीं है जो इसका पालन कर रहे हैं पाश्चात्य देश में, उनको ये नहीं पता कि आयुर्वेद का अंततः निष्कर्ष क्या है, लेकिन क्यों पालन कर रहे हैं, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि इसकी पद्धति का पालन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, तो वो भी शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग, आयुर्वेद इत्यादि। और हाँ, अल्टीमेटली इन सब का जो कल्मिनेशन जिसको हम बोलेंगे वो है भगवान की शरणागति। तो शास्त्र को यदि हम लें तो शास्त्र हमें 5 वरदान दे रहे हैं कि यदि हम, ठीक है, पिछले श्लोक में तो हमने देख लिया कि कोई यदि अपने परम उद्देश्य को नहीं प्राप्त करना चाहता तो ठीक है, वो तो शास्त्र का पालन नहीं करेगा, और शास्त्र का जो पालन नहीं करेगा उसको वो परम शांति, परम उद्देश्य, वो सब कुछ प्राप्त नहीं हो। ठीक है, तो अभी यदि हम लोग यहां पर बैठे हैं तो सोचे चलो पालन करके देखते हैं शास्त्र को, देखते हैं क्या है शास्त्र। तो शास्त्र यदि हम खोलें, जैसे भगवद गीता यदि इस ग्रंथ को हम खोलें पढ़ने के लिए या इसका अध्ययन करने के लिए, तो ध्यान में रहना चाहिए कि शास्त्रों का उद्देश्य क्या है हमारे लिए। वो किसी उद्देश्य से लिखे गए, या भगवान जो कह रहे हैं आज के श्लोक में कि कहे गए शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, तो उसके पीछे भगवान का कुछ उद्देश्य था। जैसे कोई ऑथर होता है, वो जब कोई किताब लिखता है तो उसका एक इंटेंशन होता है कि वो क्यों लिख रहा है वो किताब। तो 5 चीजें, 5 वरदान। सबसे पहले डेस्टिनेशन, डायरेक्शन, डायरेक्टर्स, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, 5 D's, कि शास्त्र सबसे पहले हमें बताते हैं कि हमारा गंतव्य स्थान क्या है। गंतव्य स्थान का अर्थ है अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, वो शास्त्र सबसे पहले बता देता है कि हम जो अब ये मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हैं, व्हाट शुड बी आवर अल्टीमेट फाइनल डेस्टिनेशन। तो कोई पूछे, ठीक है डेस्टिनेशन तो बता दिया, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचे कैसे, तो उसके लिए क्या दूसरी किताब खोलनी पड़ेगी। डेस्टिनेशन शास्त्र यदि बता रहा है तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए क्या मनोहर कहानियां पढ़नी पड़ेगी क्या? तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए फिर शास्त्र डायरेक्शन भी दे रहे हैं कि ये है आपका डेस्टिनेशन और ये है डायरेक्शन। तो फिर अगला प्रश्न कोई पूछे कि ठीक है डायरेक्शन तो बता दिया, परंतु यदि बीच में मैं पथभ्रष्ट हो जाऊं, पथभ्रष्ट होने का अर्थ क्या है, डिविएट हो जाऊं मैं एक्चुअल रोड से, डिविएट हो जाऊं, तो भगवान उन्हीं शास्त्रों में वर्णित करते हैं कि डायरेक्टर्स भी भेजेंगे भगवान। वो भी शास्त्रों में लिखा है कि जो आचार्य गण हैं वो आचार्य गणों कैसे, वो आचार्य गण जो प्रतिनिधि हैं उस शास्त्र के, वो आकर हमें कैसे सही राह पर लाएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद, अब श्रील प्रभुपाद अमेरिकी और यूरोपी जो वहां के व्यक्तियों को जो प्रचार प्रारंभ किया उन्होंने, तो उन्होंने प्रभुपाद ने जब उनको डेस्टिनेशन बताया, क्या डेस्टिनेशन, गोलोक वृंदावन, तो गोलोक वृंदावन किसी को समझ में नहीं आया कि ये कौन सा डेस्टिनेशन है गोलोक वृंदावन। अभी उनको तो लग रहा था कि सारी दुनिया अमेरिका को डेस्टिनेशन बना के आती है, इसे ऊपर क्या है, अमेरिका मून पे जाकर आ गए, कुछ उधर मिला नहीं, पत्थर उत्थर लेकर आ गए, तो अब इससे ज्यादा क्या है। तो प्रभुपाद ने कहा गोलोक वृंदावन, वैकुंठ, ये डेस्टिनेशन। तो उन्होंने पूछा कि क्या है ये गोलोक वृंदावन, तो प्रभुपाद ने फिर समझाया उनको कि गोलोक वृंदावन क्या है। अब वो लोग ऐसे स्तर पर थे कि गोलोक वृंदावन की व्याख्या क्या समझे, कि गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य पार्षदों के साथ नित्य लीला में रमणित रहते हैं, वेयर एवरी स्टेप इज अ डांस, एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, एंड ऑल अराउंड एवरी वन इज अकम्पनीड बाई कृष्णा स्वीट फ्लूट प्लेइंग. वो तो उनको समझ में नहीं आ रहा. तो एक हिप्पी ने प्रभुपाद को पूछा, क्योंकि वो लोग उस समय ड्रग्स वगैरह बहुत ले रहे थे, तो एक हिप्पी धुत नशे में धुत पूछता है, व्हाट इज दिस गोलोक वृंदावन. तो प्रभुपाद ने देखा कि अभी इसको सही डायरेक्शन कैसे देना है इसके लेवल पे. तो प्रभुपाद ने कहा, गोलोक वृंदावन इज ओशन ऑफ एलएसडी. तो एलएसडी उनका सबसे पॉपुलर ड्रग था. तब हो सकता है कि ये शास्त्र में कहा मेंशन थोड़ी है, तो कि गोलोक वृंदावन में एलएसडी, उधर तो चाय कॉफी भी नहीं मिलती होगी, एलएसडी कहां से. लेकिन उस व्यक्ति को सही राह पे लाने के लिए प्रभुपाद जैसे डायरेक्टर ने डायरेक्शन दिया कि सबसे पहले तुम राइट टर्न लो. जैसे हम लोग अगर कहीं पे पथभ्रष्ट हो जाते हैं तो कोई बोलता है ना, सबसे पहले आगे वाला राइट टर्न ले. बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को बताओ द्वारका सर्कल. अरे पहले राइट तो लो. नहीं नहीं द्वारका सर्कल. अरे पहले राइट लो. तो क्या बोलेगा कि पहले जो मैं बोल रहा हूं फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो करो. फिर वो बोलता है राइट लोगे फिर बाद में पान पट्टी की दुकान आएगी. वो जो पान पट्टी की दुकान में जो बैठा हुआ है, वो जो पान लगा रहा है, पान मत खाना, वो मेरा दोस्त है, उसको पूछना. तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप जो डायरेक्टर्स होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन देते. तो डायरेक्टर्स क्यों भेजते हैं भगवान, जो कि शास्त्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जो हैं वो कौन हैं, तटस्थ शक्ति हैं, वी आर वल्नरेबल टू गेट डिविएटेड, इसलिए डायरेक्टर्स भेजते हैं भगवान. तो ठीक है, अब मैं डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए डायरेक्शन का फॉलो कैसे करूं, उसको फॉलो कैसे करूं, तो उसके लिए डिसिप्लिन है कि नहीं, डिसिप्लिन. अब आप देखिए कि एक कॉमन, आपको अगर किसी डेस्टिनेशन, यहां पर किसी भौतिक डेस्टिनेशन पर भी पहुंचना है तो ये पांच चीजों की जरूरत पड़ती है कि नहीं. पहले मालूम होना चाहिए कि कहां जाना है, डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, फिर डायरेक्टर्स होने चाहिए. डायरेक्टर जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति हो, माइलस्टोन्स भी डायरेक्टर्स बन जाते हैं. माइलस्टोन्स बताते ना कि मुंबई इतने किलोमीटर अभी है, तो वो डायरेक्टर बन जाते. फिर आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है. किसका डिसिप्लिन? वो जो ट्रैफिक और जो रोड का डिसिप्लिन है वो फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर आप ठीक से पहुंचेंगे. और डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन. तो हम अक्सर देखते हैं कि लोगों में ये डिटर्मिनेशन क्यों नहीं होता है. प्रॉब्लम कहां से शुरुआत होती है? डिटर्मिनेशन से. निष्ठा नहीं है. क्यों निष्ठा नहीं है? क्योंकि सबसे पहले किसी ने डेस्टिनेशन ही नहीं बताया. जैसे हम लोग एक बॉम्बे में, एक चेंबूर में एक प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, बहुत साल पहले की बात है. तो जो भक्त ड्राइव कर रहे थे उनको ठीक एड्रेस नहीं पता था, बस इतना पता था कि वो जो RCF है, प्रियदर्शनी जो बिल्डिंग है, वहां के आसपास कहीं पे. तो हम लोग जैसे वहां पहुंचे तो अब हुआ क्या कि वो जब चला रहे हैं तो उनको, क्योंकि पता नहीं एग्जैक्ट एड्रेस, तो एक्सीलेटर पर पैर इतना अच्छे से नहीं लग रहा था, एकदम धीरे धीरे 20 की स्पीड पर जा रहे हैं. देखते हुए कहीं पे कुछ साइन दिख जाए, कोई व्यक्ति पूछे उससे, तो एकदम धीरे धीरे जा रहे थे. फिर बाद में एक को रुका के पूछा, अरे अरे आप तो आगे. बोला हाँ, वो पिछला वाला राइट टर्न था. फिर जब पता लगा कि पिछला वाला राइट टर्न था, उसके बाद में मैंने देखा कि स्पीड क्या थी, एक्सेलेटर के ऊपर पूरा प्रेशर 80 की स्पीड पे यू टर्न लेके। तो क्या था वो? डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन कि अभी फुल स्पीड पे जाना है। क्यों डिटर्मिनेशन था? क्योंकि डेस्टिनेशन मिल गया अभी। और डेस्टिनेशन कैसे मिला? सही डायरेक्शन। तो इसलिए हम लोग भी कई बार अपने जीवन में जब डिटर्मिनेशन की मात्रा कम पाते हैं तो चेक करना चाहिए कि प्रॉब्लम ऊपर के चार में कहीं पे हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का डेस्टिनेशन ही नहीं मालूम कहां जाना है, कि सब कुछ तैयार है, गाड़ी चलाना सीख लिया, गाड़ी भी खरीद ली, रोड पर भी है, और कोई पूछ रहे कहां जा रहे हैं, जहां ले जाए। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, बस जिंदगी कट रही है, काट रहे हैं, सही में कट रही है। तो समझना चाहिए कि जब भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो ये पांच चीजें क्या हम हासिल कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा, दीज फाइव डीज व्हेन वी आर स्टडिंग शास्त्र। अब आज के श्लोक के अनुसार कृष्ण के आदेश को शास्त्र के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो कोई कहे कि अरे भाई ये सब पढ़ने वढ़ने की जरूरत क्या है, बिना इसके कुछ दूसरा कोई तरीका नहीं है क्या भगवान को जानने का? तो भगवान ने देखिए बहुत ही सिस्टमैटिकली स्ट्रेटेजिकली स्वयं को जानने के लिए शास्त्रों को हमारे लिए प्रस्तुत कर कर भेजा। अब जैसे कि आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसे ही कि ये अभी इसको भी हम शास्त्र बोलेंगे, ये लैपटॉप, क्योंकि प्रभुपाद की सारी पुस्तकें श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत सब आजकल इसके अंदर आ जाता है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि शास्त्र क्या केवल वो ऐसे जो ग्रंथ जो ना वो पत्तों पे लिखे हुए, कई बार लोग ऐसे हमको, हम लोग भगवद गीता का स्टॉल लगाते हैं तो कई बार लोग आके ऐसे पूछो ओरिजिनल वेदा है क्या? ओरिजिनल वेदा जैसे कि ओरिजिनल वेदा अगर उनको मिल भी जाए तो पढ़ना आएगा उसमें उनको, तो ओरिजिनल वेदा उनको पूछो तो क्या मतलब, वो जो हिमालय की गुफाओं में व्यास देव जी ने एकदम वो पत्तों के ऊपर जो लिखा वो वाला है क्या? नहीं तो आजकल, आजकल लोग तो सब लोग मोबाइल के अंदर सब कुछ आ जाता है, यहां तक कि उसको ही शास्त्र बना देते हैं। मोबाइल निर्जीव है, सिम कार्ड उसका आत्मा है, ऐसे बोलते हैं। गीता आजकल लेटेस्ट 21st सेंचुरी का गीता का उपदेश, मोबाइल निर्जीव है, सिम कार्ड उसका आत्मा है, एसएमएस वो ज्ञान है जो बांटने से बढ़ता है, इसलिए बैलेंस की मोह माया छोड़कर एसएमएस करता कर निरंतर करता रहे बेटा, ये आजकल है ना उनका ज्ञान है। तो जब हम शास्त्र की बात कर रहे हैं तो हां, जो कुछ भगवान के मुखारविंद से निकला और जो हमारे प्रतिनिधि या भगवान के प्रतिनिधि जो उसको प्रस्तुत कर रहे हैं एज इट इज, जैसे प्रभुपाद ने कैसे प्रस्तुत किया, एज इट इज उसको प्रस्तुत किया। तो इसलिए भगवान को जानना है तो शास्त्र के द्वारा ही भगवान जाने जा सकते हैं। अब कोई कहे कि भगवान तो सबके हृदय में स्थित हैं, अंतर्यामी परमात्मा तो भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, तो भगवान भगवत गीता में ही कहते हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, कि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूं। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च मुझसे ही ज्ञान और मुझसे ही अपोहनम, मुझसे ही स्मृति और मुझसे ही विस्मृति। अपोहनम का अर्थ क्या है? विस्मृति। तो मुझसे ही स्मृति, मुझसे ही विस्मृति आ रही है। और फिर भगवान कहते हैं वेदस्य सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह। तो ये जो श्लोक है 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूं, लेकिन मेरा साक्षात्कार करने के लिए शास्त्र खोलना पड़ेगा। इवन दो कृष्णा इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, स्टिल इन ऑर्डर टू रियलाइज हिम वी नीड टू स्टडी द स्क्रिप्चर्स। तो क्वेश्चन व्हाई? अगर वो हमारे अंदर स्थित हैं, हृदय के अंदर, तो क्यों हमको शास्त्र खोलने? बहुत से लोगों का ये एक तर्क रहता है, अरे क्या ये सब प्रवचन जप और ये आपके शास्त्र वगैरह, मेरे तो भगवान यहां पर है अंदर और सब मेरे को वहीं से डायरेक्ट टेलीकास्ट वहीं से हो रहा है। तो एक वैलिड क्वेश्चन है, व्हाई? बस बोलिए व्हाई, आंसर कीजिए आप लोग। इफ लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, व्हाई देन वी हैव टू स्टडी स्क्रिप्चर्स? व्हाई नॉट द सेम लॉर्ड फ्रॉम विद इन द हार्ट? क्यों इतना घुमा फिरा के भगवद गीता लो खोलो, यहीं से शुरू कर दो ना बोलना, व्हाई? क्या मत है आप लोगों का? किसी का कोई मत है? हाँ, सो व्हाई नॉट द परमात्मा फ्रॉम विद इन गिव अस 5 डीज, नॉट 50 डीज दे सकते हो तो अंदर से? ओके, या so then I can again ask this question that why can't he become the director? He has given us a choice. Okay. यहां पे अवश्य ही जो परमात्मा हमारे हृदय में स्थित हैं, उनको भी गुरु बोला गया है, चैत्य गुरु, हमारे चित्त के अंदर के गुरु, उनको भी गुरु कहा गया है। परंतु समस्या क्या होती है कि भगवान के साथ साथ और भी बहुत लोग बैठे हैं। There are many others sitting in our heart other than Krishna. So you may never know whose voice it is. अंदर से अगर कोई कहते हैं कि मैं अंदर से दिल से आवाज आ रही है इसलिए मैं कर रहा हूं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक व्यक्ति he became a serial killer killing people. And when he was asked, he said, the Lord from the heart was ordering me to do that. तो यहां पर जब हम ये बोल रहे हैं कि there are many others sitting in our heart, many others means काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, छे तो वही अपना पूरा साम्राज्य खोलकर बैठे हैं अंदर हमारे। So we may mistake Krishna's voice when lust speaking to us, or when anger is speaking to us, or when false ego is speaking to us. So we may mistake their voices as Krishna's voices. कह रहे मैं जो कर रहा हूं दिल से कर रहा हूं, क्यों? अभी दिल में बोलते ना बहुत लोग, मैंने दिल से किया। उसको मैंने दो थप्पड़ भी एकदम दिल से मारा। और फिर बोलते दिल में तो भगवान बैठे हैं, तो फिर मैंने थोड़ी मारा। तो ये जो पॉइंट है कि वो जो एकदम शुद्ध हो चुके हैं, जो जो छह अनर्थ हैं काम क्रोध लोभ मत्सर इत्यादि, उनसे जो मुक्त हो चुके हैं, जो उनसे शुद्ध हो चुके हैं, उनके हृदय में फिर केवल एक ही आवाज उनको सुनाई देती है और वो है चैत्य गुरु परमात्मा की। लेकिन उससे पहले सावधान हो जाना चाहिए कि बहुत से चैनल्स चल रहे हैं, अंदर बहुत से चैनल चल रहे हैं और परमात्मा का चैनल बहुत कम ऑन रहता है। सो बी केयरफुल। इसलिए जो बाहर के शास्त्र हैं वो बताते हैं कि ये अंदर के चैनल पहले कैसे बंद करो, अननेसेसरी लस्ट एंगर ग्रीड प्राइड ये सब के, ये शास्त्र बताते हैं। और फिर फाइनली जो चैत्य गुरु हैं वो, जैसे ध्रुव महाराज की कथा है कि ध्रुव महाराज वो जब भक्ति प्रारंभ किए तो उनके मन में बदले की भावना थी कि मेरे पिता और मेरी सौतेली मां ने मेरा अपमान किया, तो उस बदले की भावना को लेकर उन्होंने भक्ति प्रारंभ की। फॉर्च्यून क्या था उनका कि उन्होंने भक्ति प्रारंभ की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इनका जप चालू किया और तपस्या, वो भी मधुवन वृंदावन में। तो हुआ क्या कि जब उन्होंने नारद मुनि जो कि शास्त्र के ज्ञाता, वन हु इज वेल वर्स्ड विथ ऑल द स्क्रिप्चर्स, वन हु इज वन ऑफ द मोस्ट फॉरमोस्ट डायरेक्टर्स, उन्होंने डायरेक्शन दिया और फिर शास्त्र पर आधारित नारद मुनि की वाणी का जब पालन किया ध्रुव महाराज ने, तो ध्रुव महाराज इतना शुद्ध हुए कि भगवान जब सामने आए तो ध्रुव महाराज के हृदय से भगवान को का गुणगान करते हुए प्रार्थनाएं निकलने लगी। उनको भी पता नहीं कि कहां से आ रही, क्योंकि सब जो भी छह अनर्थ वो सब शुद्ध हो चुके थे, इसलिए केवल अंदर से भगवान की वाणी ही सुनाई दे रही थी। तो इसलिए शास्त्र कोई अगर ये पॉइंट कहे कि भगवान तो सबके हृदय में, तो फिर शास्त्र की क्या जरूरत है। तो ये कारण है। इसलिए श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज ने कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह, वन हु इज सफिशियंटली इंटेलिजेंट शुड प्रैक्टिस द एक्टिविटीज ऑफ डिवोशन सर्विस फ्रॉम द टेंडर एज ऑफ चाइल्डहुड। क्यों? क्योंकि जितना लेट हम शास्त्र खोलेंगे उतना ये अंदर की जो आवाजें हैं बाकी उसका क्वांटिटी बढ़ते जाएगा। तो इसलिए अंदर के जो बाकी के फालतू के चैनल्स जो बताए अभी हमने छह अनर्थों के, वो चैनल्स खोले ही ना, इसलिए शास्त्र कब उठा लेना चाहिए। अभी यहां पे आपको ये फोटो बहुत अजीब लग रहा होगा, अरे इतना छोटा सा बच्चा भगवत गीता, ये क्या बात हुई। तो शास्त्र छोटे से जो मतलब कुमार अवस्था में, कुमार अवस्था कौन सी होती है, पांच वर्ष की, पांच वर्ष की अवस्था से उनके लिए उन्हें क्या समझ में आए ये सब कुछ भी उन शास्त्रों में बताया गया। जैसे कि हमारे इस्कॉन में भक्तों के छोटे बच्चे होते हैं, तो अब देखिए कि ये नहीं कि वो लोग जो एकदम भगवत गीता के टेक्निकल जो परपोर्ट्स हैं वो पांच वर्ष की अवस्था में समझ लेते, नहीं। लेकिन हमने देखा है कि ऐसे ऐसे बच्चे की जो भगवत गीता, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक मैंने लंदन में एक हमारे भक्त हैं, उनका लड़का केवल छह साल का है, उसका नाम भी सुमेधा, सुमेधा का अर्थ है जिसकी मेधा बहुत शार्प है, मेधा का अर्थ है इंटेलिजेंस, उसका नाम है सुमेधा। ये बच्चा मतलब हो सकता है इसका नाम गिनीज बुक में आना चाहिए, इसे पूरी भगवत गीता कंठस्थ है। और किस तरीके से कंठस्थ है कि यदि मैं कहूं बोलो 17.2, तो नंबर से मालूम है इसको 17.2 क्या है। और यदि मैं कहूं कि 16 चैप्टर में किसी श्लोक का कोई वर्ड मैं बोल दिया तो पूरा श्लोक कंप्लीट कर सकता हूं। तो ये उस अवस्था में उसने, क्योंकि क्या होता है कि वो बोलते हैं ना, व्हेन द सीमेंट इज वेट यू कैन मोल्ड इट, वंस इट गेट्स ड्राइड फिर हथौड़ा ही मारना पड़ता है उसको तोड़ने के लिए। तो होता क्या है कि हम जीवन भर वो सीमेंट को इतना सुखा देते हैं, फिर बाद में जब एकदम मरण शैया पर पहुंच जाते हैं फिर भगवद्गीता कहां, भगवद्गीता कहां, भगवद्गीता कहां। और कई बार तो मरने के बाद परिवार वाले पढ़ते हैं भगवद्गीता, चला गया तो लाभ क्या फायदा, तो चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि उस अवस्था से हमें भी याद है कि बचपन में हमको जो गीता रेसिटेशन अर्थ वगैरह इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन वो जो बुद्धि उस समय थी शार्प, उसको ग्रैस्प करने की, उच्चारण करने की, सब कुछ एकदम एकदम फ्रेश रहता है वो बच्चे के लिए। तो जो संस्कार वो बच्चे पर आप इम्प्रिंट करते हो वो ऑलमोस्ट ऑल थ्रू आउट उसके लाइफ पे रहता है। इसलिए यहां पर ये महत्वपूर्ण बताया गया है कि शास्त्र का अध्ययन कहां से शुरू होना चाहिए। अब यदि हम इस चार्ट को फिर से समझें कि फाइनली सबके स्रोत कौन है, यहां भगवान, कि भगवान से अक्षर ब्रह्म वेद कर्म यज्ञ वर्षा अन्न मनुष्य शरीर, तो भगवान ही सबके स्रोत हैं, भगवान ही सबके कारण हैं, परंतु भगवान का कारण कोई नहीं है कि नहीं। ये भगवान की परिभाषा है, वन हु इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज विदाउट हिम हैविंग एनी कॉज, सर्व कारण कारणम। यहां पर लेकिन हमारे आचार्य बहुत ही एक सुंदर व्याख्या करते हैं बलदेव विद्याभूषण, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि देयर इज वन थिंग विच बिकम्स कॉज फॉर कृष्णा एंड व्हाट इज दैट थिंग, we human beings can become the cause of Krishna's pleasure or Krishna's displeasure. Very refined statement that we can become the cause of Krishna's pleasure and displeasure. We are not the cause of his creation, but we can create pleasure more in Krishna's life by following Shastra. And that is even more glorious than creating Krishna. जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि कई जो निर्विशेषवादी हैं, वो जो भगवान में विलीन होना चाहते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं एक भक्त तो भगवान से भी ऊपर हो जाता है कि वो भगवान के ऊपर नियंत्रण करता है। तो मनुष्य जो है, हमने वो जो अभी चार्ट देखा, उस चार्ट में ये देख सकते हैं कि मनुष्य वो कारण बनता है भगवान की प्रसन्नता एवं अप्रसन्नता के लिए। और इसके क्लासिक उदाहरण यशोदा माई, कि यशोदा माई वो उन्होंने विश्वरूप देखा भगवान के मुख में, और ऐसा विश्वरूप कि जिसके अंदर सारे ब्रह्मांड ग्रह इत्यादि, और यशोदा माई वो भगवान के मुख में वो विश्वरूप देखने के पश्चात यशोदामाई शास्त्रों के भी परे जाकर अपने छोटे से कान्हा की चिंता करने लगी कि इतने सब इसके मुंह में आ गया, बदबू तो नहीं आएगी इसके मुंह से, तो अब देखिए भगवान कृष्ण यशोदा माई को अपना सर्व कारण कारणम रूप दिखा रहे हैं, परंतु यशोदा माई का प्रेम और भगवान को इतनी प्रसन्नता यशोदा माई देती हैं कि भगवान का वो उनका उनकी उनकी जो ग्रेटनेस है वो यशोदा माई के सामने फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेम के कारण, भक्ति के कारण। तो यशोदा माई भगवान को इतना प्रसन्न करती हैं अपनी भक्ति से कि भगवान का वो जो ऐश्वर्य रूप है, सर्व कारण कारणम रूप जो है, वो भी चला जाता है। तो इसलिए जो बलदेव विद्याभूषण बोल रहे हैं कि शास्त्र को पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि हम कारण बने सर्व कारण कारणम के। कौन सा कारण बने? उनको प्रसन्नता देने का कारण बने। अब श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि एक है शास्त्र, और हमने चर्चा की 5 D's में से जो डायरेक्टर्स हैं वो गुरु हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि चेक बैलेंस कहां से होता है? गुरु, साधु, शास्त्र। तो यदि कोई डायरेक्टर भी है और हमको डायरेक्ट भी कर रहा है, परंतु एक डिसाइपल को इंटेलिजेंट होना चाहिए कि क्रॉस चेक करे। कहां क्रॉस चेक करे? कि ये जो डायरेक्टर मुझे डायरेक्ट कर रहा है, क्या ये शास्त्र में बताया गया है कि नहीं। और साधु का अर्थ है कि उस डायरेक्टर ने और अन्यों को जो डायरेक्ट किया, क्या वो लोग अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त किए कि नहीं इसके डायरेक्शन के कारण। ये इसलिए प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि अक्सर हम आजकल देखते हैं कलयुग में कि गुरु किसी को भी कोई बना लेता है, और फिर वो गुरु कुछ भी आदेश दे उनको लगता है कि वो शास्त्र ही है। ये जरूरी नहीं है। शास्त्र में ये बताया गया है कि यदि गुरु शास्त्र के आधार पर आदेश नहीं दे रहा है तो उस गुरु को छोड़ दो। यू कैन गिव अप, रिनाउंस दैट गुरु हु इज नॉट टीचिंग अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। और इसके उदाहरण हैं शुक्राचार्य और बलि महाराज। कि शुक्राचार्य वो बलि महाराज के गुरु, और शुक्राचार्य बलि महाराज को जितने सारे आदेश दिए, लेकिन जब वामन देव, भगवान श्री विष्णु का एक अवतार वामन देव, जब वामन देव आकर बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगते हैं, तब शुक्राचार्य बलि महाराज को कहते हैं नहीं देना, बिल्कुल मत देना। शुक्राचार्य क्या बोलते हैं? ये विष्णु है, ये कोई बौना ब्राह्मण नहीं है। तो देखिए शुक्राचार्य शास्त्र को जानते थे, और वो जानते थे कि ये भगवान का एक अवतार है। कौन सा? वामन देव का। सोचिए कि गुरु का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि शिष्य को भगवान से मिलाए, और यहां गुरु उल्टा बोल रहे हैं कि मत देना। क्यों मत देना? क्योंकि ये तो सब ले जाएगा भगवान, ये तो सब ले जाएंगे, तो फिर मेरा दाना पानी कौन देगा। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया कि शुक्राचार्य ने इस कारण से बलि महाराज को रोका। तो बलि महाराज ने सोचा कि ये अगर मेरे गुरु बने हुए मुझे कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण को शरणागत नहीं हूं, तो मैं सबसे पहले इनको शरणागत नहीं होऊंगा। तो बलि महाराज के अंदर वो करेज, हिम्मत थी कि उन्होंने शुक्राचार्य को बोला कि मैं इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको छोड़ने वाला हूं, क्योंकि आप शास्त्र के विरुद्ध बात बोल रहे हैं। और बलि महाराज वो देवताओं के लाइन में नहीं थे, वो दैत्यों के लाइन में थे, मतलब हिरण्यकशिपु के वंशज। तो सोचिए हिरण्यकशिपु के वंश में बलि महाराज, जो कि प्रहलाद महाराज के पोते हुए आगे चलकर, बलि महाराज वो शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र को कैसे उन्होंने समझा कि गुरु ने जब कुछ कहा तो उसको क्रॉस चेक किया कि शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं कि नहीं, नहीं बोल रहे हैं, ये अनबोनाफाइड है। तो इसका एग्जाम्पल भी शास्त्र में दिया गया। ये एग्जाम्पल कहां से दिया है हमने? श्रीमद् भागवत से दिया है कि कैसे बलि महाराज ने शुक्राचार्य को रिजेक्ट किया। अब आगे भगवान कहते हैं, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, वेदों की उत्पत्ति श्री भगवान से हुई है। श्रीमद् भागवत में जब अजामिल उपाख्यान वर्णित किया गया, सुखदेव गोस्वामी ने जब किया, तो उसमें अजामिल को ले जाने के लिए यमदूत भी आए, विष्णुदूत भी आए, और दोनों में जो वार्तालाप हुआ, यमदूत और विष्णुदूत में जो वार्तालाप हुआ, तो विष्णुदूतों ने यमदूतों से पूछा कि बताओ शास्त्र के आधार पर अजामिल को कहां जाना चाहिए, शास्त्र के आधार पर बताओ। तो यमदूतों ने ठीक शास्त्र के आधार पर बताया कि अजामिल जैसा पापी उसे कहां जाना चाहिए। तब फिर विष्णुदूत यमदूतों से पूछते हैं, बताओ कि ये शास्त्र लिखे किसने? तो बोले लिखे नहीं, हमें तो यमराज जी ने बताया। नहीं नहीं, लेकिन शास्त्र के स्रोत कौन है? तो वो कहे नहीं नहीं, यमराज जी। तो यमदूत शास्त्र को ठीक ठीक कोट किए, लेकिन वो ये भूल गए जानना कि शास्त्र के स्रोत साक्षात नारायण है, जिसका नाम इसने लिया। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि कई ऐसे धारणा वाले हैं कि जो शास्त्र को मानते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते, ऐसे भी कैटेगरी के हैं। बहुत वैरायटी है कलयुग में। एक है भगवान को मानेंगे, शास्त्र को नहीं मानेंगे। एक है दोनों को नहीं मानेंगे, शास्त्र भी नहीं, भगवान भी नहीं, कुछ नहीं, मैं खुद हूं सब, जो कुछ मैं हूं, मैं भगवान, मैं जो बोलता हूं वही शास्त्र मेरा। खैर उनकी तो चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन ये कैटेगरी है जो लोग शास्त्र को मानते हैं लेकिन ये नहीं मानते कि शास्त्र किसी भगवान से आ रहा है। जैसे कि यमदूत, यमदूत का एग्जाम्पल है कि वो इससे अनभिज्ञ थे कि ये शास्त्र भगवान से आ रहा है। तो अब ब्रह्म संहिता जो कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थनाएं की भगवान श्री कृष्ण के प्रति, और ये कब प्रार्थनाएं की? जब भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। तो कोई अगला प्रश्न पूछता है कि ये जो शास्त्र भगवान से आए हैं तो कैसे आए हैं? तो उसके विषय में भी शास्त्रों में बताया है, वेद श्री भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए। भगवान केवल श्वास लेते हैं तो वहां से वेद की उत्पत्ति होती है। और भगवान श्री कृष्ण जो बांसुरी बजा रहे हैं, अब देखिए कई बार हमको लगता है कि भगवान कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं वो तो खाली क्या गोपियों को रिझाने के लिए, गायों को बुलाने के लिए। जैसे आप लोग देखो ना, कई बांसुरी बेचने वाले बजाते ना, बांसुरी बजाते बजाते कि मेरे पास भी अलग अलग वैरायटी की बांसुरी है, ये ले लो वो ले लो। तो हमको लगता होगा कि भगवान भी बांसुरी बजाते हैं तो ऐसे ही थोड़ा उनका टाइम पास कुछ करने के लिए बजा रहे होंगे। नहीं, भगवान की बांसुरी से भगवान की श्वास निकलती है, बांसुरी की ध्वनि से, जैसे यहां पर बताया गया। तो वो जो बांसुरी की ध्वनि से भगवान की श्वास निकलती है, तो बांसुरी की ध्वनि सारे वेद हमें प्रस्तुत कर दे रही है। तो हमें केवल ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान खाली शरद पूर्णिमा के रात गोपियों को बुलाने के लिए बांसुरी बजाए, कि यहां पर इतना गूढ़ शास्त्र का ज्ञान भगवान की बांसुरी के ध्वनि से बाहर निकलता है, क्योंकि वहां से भगवान के श्वास। तो श्वास से शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है भगवान के श्वास, भगवान के श्वास से, हमारे श्वास से तो खाली बदबू आती है। तो यहां देखिए भगवान कितने सर्व आकर्षक क्यों बताया गया है कि उनके श्वास से सोचिए कि शास्त्रों की उत्पत्ति होती। फिर आगे आज के श्लोक में तस्मात सर्वगतम ब्रह्म, भगवान को सर्वगत ब्रह्म आज के श्लोक में कहा गया है। अब आपको हम थोड़ा पीछे ले जाएंगे दूसरे अध्याय में, जहां ये श्लोक में 24वें श्लोक में भगवान ने कहा हम जीवात्माओं के विषय में। तो हम जीवात्माओं के विषय में भी भगवान ने क्या कहा है, सर्वगत, जिसको हमने हाईलाइट किया है, अच्छेद्योयम अधायोयम अक्लेद्यो सोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणूर। तो आज के श्लोक में भगवान कृष्ण को सर्वगत, और इस श्लोक में दूसरे अध्याय के हम जीवात्माओं को भगवान सर्वगत कह रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, भगवान सर्वगत ब्रह्म है और हम सर्वगत स्थाणु हैं। तो ये सर्वगत स्थाणु का अर्थ क्या होता है, हम जीव पूर्व काल में अलग अलग समयों पर सभी शरीरों में जा चुके हैं, ये मतलब है। ये नहीं कि हम सब जगह मौजूद हैं भगवान की तरह, इसलिए ये थोड़ा एक संस्कृत ग्रामर जो कि कंटेक्चुअली प्रेजेंट किया गया है उसकी व्याख्या हमारे आचार्य की है। क्योंकि कई जो मायावादी होते हैं वो कहते हैं कि अरे हम भी सर्वगत बताया है दूसरे अध्याय में और आज के श्लोक में 3.15 में भगवान को भी सर्वगत बताया, तो फिर दोनों में अंतर क्या है, ये अंतर है। भगवान सर्वगत क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे, तीन अर्थ बताएं सर्वगत ब्रह्म के भगवान के संदर्भ में, और हमारे संदर्भ में सर्वगत स्थाणु का अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या है कि हम अलग अलग समयों पर जितने सारे 84 लाख शरीर हैं उनमें भ्रमण। तो मतलब ये कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं है, भगवान पोलाइटली क्या बोल रहे हैं कि सारे जेलों में भ्रमण करके आया है जी, ये शरीर क्या है, अलग अलग जेल हैं। तो बोलते ना घाट घाट का पानी पी के आया है, तो कई बार उसको कॉन्टेक्चुअली समझना पड़ेगा, घाट घाट का पानी पीकर आया है मतलब बहुत तजुर्बेकार है, और घाट घाट का पानी पीने का मतलब यह है कि एक घाट पर टिका नहीं कभी है। तो भगवान जब बोल रहे हैं कि अलग अलग समयों पर सारे शरीरों में ये जीव जाकर आया है, इसका मतलब ये है कि कभी तिहाड़ जेल में गया, कभी नासिक के सेंट्रल जेल में, कभी येरवाड़ा में, है ना पुणे में येरवाड़ा जेल, सब जेलों में जाके जीव आया। तो ये बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया है, सर्वगत ब्रह्म और सर्वगत स्थाणु हम इसमें। अब सर्वगत ब्रह्म के तीन अर्थ बताए गए, तो सबसे पहला अर्थ हम देखेंगे, सर्वगत का विच्छेदन करें तो सर्व का अर्थ हुआ समस्त प्राणी, गत का अर्थ हुआ स्थित। तो सर्वगत का पहला अर्थ आचार्य कहते हैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा के रूप। तो यह है पहला अर्थ सर्वगत ब्रह्म का। दूसरा अर्थ सर्वगत ब्रह्म का यह है कि फिर से यदि इसका विच्छेदन करें दो शब्दों का, तो समस्त स्थानों में स्थित। तो दूसरा अर्थ सर्वगत ब्रह्म का है जो समस्त स्थानों में स्थित हो। और तीसरा अर्थ हमारे आचार्य कहते हैं कि जो सभी जीवात्माओं से अवगत हैं। अवगत का अर्थ है कि वो जानते हैं कि हमने कौन कौन से कर्म किए हैं, क्या हम अभी सोच रहे हैं और क्या हमारा भविष्य है। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान ने कहा कि जो भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाले, तो ये तीन अर्थ सर्वगत ब्रह्म के हैं, समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित, समस्त स्थानों में स्थित और समस्त जीवात्माओं के विषय में सब कुछ जानने वाले। ये अंतर है हम जो सर्वगत स्थाणु हैं और भगवान आज के श्लोक में जो उनके विषय में कहा गया। अब जो अंतिम लाइन आज के श्लोक की, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, ये बहुत ही विशेष लाइन भगवान ने आज कही कि वह सर्वगत ब्रह्म जो कि सभी स्थानों में स्थित है, सभी के हृदयों में स्थित है, साइमल्टेनियसली वो यज्ञ में प्रतिष्ठित है, केवल स्थित नहीं, प्रकृष्ट रूपेण अस्तित्व जिसको कहेंगे, प्रतिष्ठित यज्ञ में। तो कैसे समझें कि जो सर्वव्यापी हैं वो यज्ञ में विशेष रूप से कैसे प्रतिष्ठित हैं? तो एक उदाहरण से हम समझेंगे। क्या दिख रहा है सब जानते हैं, हम हैंडपंप। तो आपने देखा होगा कि जल जो है वो धरती के नीचे है और वो धरती के नीचे का जो जल है उसको प्राप्त करने के लिए हम बाहर एक हैंडपंप लगाते हैं, है ना। तो यदि वो नीचे का जल उसकी तुलना सर्वगत ब्रह्म से करें तो जो सर्वगत ब्रह्म है वो सर्वगत ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए यज्ञ एक हैंडपंप की तरह है। नहीं तो अगर हैंडपंप नहीं होता तो सब लोग खोदते रहते कि चलो यहां से निकालेंगे जल, वहां से निकालेंगे। इसे एक फिलोसोफर को पूछा गया, इफ गॉड इज एवरीवेयर देन व्हाई डू वी नीड अ टेंपल, इफ गॉड इज एवरीवेयर व्हाई डू वी नीड अ डीटी। तो उन्होंने अच्छा आंसर दिया, उन्होंने कहा एयर इज एवरीवेयर व्हाई डू यू नीड अ फैन। हवा तो सब जगह है, पंखा क्यों चाहिए, क्या करता है ये पंखा? ऐसा नहीं कि उसके अंदर हवा वो प्रोड्यूस करके फेंक रहा है, वो पंखा कोई हवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, उल्टा उसको टच करो गर्म हो रहा है वो भी। तो जो ऑलरेडी हवा है वो एक साथ लाकर हमारे ऊपर फेंकता हो। तो जो यज्ञ वगैरह करते क्या है कि जो सर्वगत ब्रह्म है उसको यज्ञ के द्वारा हमारे सामने वो यज्ञ प्रस्तुत करा के देता है। जैसे कि पानी सब जगह नीचे है, हैंडपंप क्या करता है वो नीचे का पानी हमारे सामने ऊपर लाके रखता है। तो ये हैंडपंप का एग्जाम्पल ध्यान में आया। अब देखिए इंडिया में हैंडपंप को यज्ञ की तरफ पूछते भी हैं, कई बार जब उसका इनॉग्रेशन होता है कई गांवों में, ऐसे राजस्थान जैसे गांवों में बहुत मुश्किल से पानी मिला है तो हैंडपंप को लोग पूछते भी हैं कि अभी यज्ञ शुरू होने वाला है, यज्ञ का प्रसाद मिलने वाला है। और आप देखो कई हैंडपंप ऐसे होते हैं जंग खाए हुए, कितना भी हिलाओ एक बूंद पानी नहीं टपकेगा। तो इसका कारण क्या है, लोग बहुत से बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि सर्वगत ब्रह्म से तो कनेक्टेड ही नहीं हुआ हैंडपंप। तो यज्ञ हो रहा है लेकिन शास्त्र के आधार पर नहीं हो रहा है। तो बहुत से लोग अलग अलग यज्ञ कर रहे हैं लेकिन शास्त्र के आधार पर यदि यज्ञ नहीं कर रहे तो हैंडपंप तो है लेकिन जंग खाया हुआ है या नीचे से कनेक्टेड नहीं है, या कनेक्टेड भी हो लेकिन हैंडपंप में प्रॉब्लम है कि वो यज्ञ भी कर रहे हैं शास्त्र के आधार पर परंतु त्रुटियों के साथ साथ कर रहे हैं, तो फिर भी वो जल प्राप्त नहीं हो रहा। और कई बार हम देखते हैं कि बहुत हिलाने के बाद एक धार निकलती है पतली सी। तो कई ऐसे कलयुग में यज्ञ वगैरह हैं, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, उसके बाद में कुछ थोड़ा सा फल उनको मिलता है। लेकिन कई हैं कि बहुत भर भर के पानी आ रहा है उस हैंडपंप से। मतलब कई ऐसे यज्ञ बताए गए हैं जो कि कलयुग के लिए भी निर्धारित है, और आप लोग जानते हैं कि जो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है, वो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, उसकी हम चर्चा करेंगे, उसके लिए तो चैतन्य महाप्रभु ने हैंडपंप वगैरह नहीं दिया है, दूसरा ही एक उपाय चैतन्य महाप्रभु ला कर दिए। लेकिन कलयुग में हम देखते हैं कई हैंडपंप ऐसे होते हैं, लंबी लाइन लगी है, हाँ, सबके अपने अपने डब्बे वहां पे लाइन में रखे हुए हैं। एक व्यक्ति बहुत जोर शोर से बोल रहा था, कह रहे बड़े बड़े लोगों ने मेरे आगे आके पानी पिया है, क्योंकि सरकारी हैंडपंप मेरे घर के आगे गड़ा है। तो कलयुग में हम देखते हैं कि जब कई ऐसे, जैसे अभी कुंभ मेला यहां पर आने वाला है, कुंभ मेले में आप देखो करोड़ों की संख्या में लोग, करोड़ों की संख्या में। अब हमारे जो शुद्ध आचार्य हैं वो बताए हैं कि जो करोड़ों की संख्या में इतना कुंभ मेले में वो जो महास्नान वगैरह होता है, बहुत कम होते हैं कि जो शुद्ध भावना से वहां पर स्नान करते। ज्यादातर भावना क्या होती है, सब यहां पे डंप करके फिर से शुरू करते हैं सिलसिला, किसका, पाप का। सो डोंट थिंक दैट व्हेन मल्टीट्यूड्स ऑफ पीपल आर डूइंग सम काइंड ऑफ यज्ञ, देन इट इज डन विथ अ वेरी प्योर इंटेंशन। उसका इंटेंशन क्या है कि लेट मी यूज दैट महास्नान टू क्लियर माई प्रीवियस सिंस सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द फ्रेश वंस। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु, कई कई हैंडपंप ऐसे हैं, मेरे को एक ये अमेजिंग इमेज मिला कि जहां पर अभी वो वॉल पे लिखा हो गया है कि ड्रिंक कोको कोला, जरूरी नहीं कि वो हैंडपंप से आपको वही कोको कोला मिलने वाला, हो सकता है कि आजकल कलयुग में वो भी निकल जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे यज्ञ किए जा रहे हैं कि क्रिकेट प्लेयर्स के लिए यज्ञ हो रहा है, उनके उनके नाम के मंत्र भी बनाए गए हैं, और उनके नाम के तथाकथित संस्कृत मंत्र की आहुतियां भी दी जाती है, और दूसरे पाकिस्तान के प्लेयर्स की भी अलग प्रकार से आहुतियां दी जाती है। तो इसी प्रकार से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो हमें लाकर दिए हैं, वो केवल कोई सरोवर या कोई हैंडपंप में से पानी निकलने वाला कोई यज्ञ प्रसाद नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये स्वीट ओशन ऑफ हरिनाम संकीर्तन, इसको कहा गया कि भक्ति रसामृत सिंधु। सिंधु किसे कहते हैं, ओशन को। और ये कैसा ओशन है, खारा ओशन है जो यहां पर इस संसार में दिखता है, ये मीठे जल का। और चैतन्य महाप्रभु इसे हमें ऐसे समुद्र में हमें गोते लगाने के लिए हरिनाम संकीर्तन ला के दिए कि न केवल हमारी प्यास बुझेगी, हमारी थकान, बल्कि इतना जल है कि हम ये जल को ले लेके चैतन्य महाप्रभु जैसे यहां पर बांट रहे हैं, ऐसे समुद्री या भक्ति रसामृत सिंधु, स्वीट वाटर ऑफ द होली नेम्स, इसको जो चैतन्य महाप्रभु बांट रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु हम सबको आह्वान कर रहे हैं कि हम लोग सब न केवल ऐसे हरिनाम संकीर्तन के सिंधु में गोते लगाएं, उसका आस्वादन करें, हमारी जो आध्यात्मिक प्यास है उसे बुझाएं, बल्कि हम दूसरों को जा जाकर बांटें, उनको ऐसे समुद्र में लाकर हम गोते लगवाएं और उनका जीवन हम शुद्ध बनाएं। तो आज के श्लोक में फाइनली हम क्या समझ रहे हैं कि भगवान जो ये पूरा चक्र बताए हैं 3.14 से लेके आज के श्लोक तक, तो उसमें बलदेव विद्या भूषण की विशेष जो टिप्पणी क्या है कि भगवान जो कि सबके कारण हैं, चाहे वो अन्न हो, यज्ञ हो, वर्षा हो, हमारे नियत कर्म, जो कुछ हमारा शरीर, लेकिन हम ऐसे यज्ञ में जो कि कलयुग में हरिनाम संकीर्तन में लगकर हम भगवान की प्रसन्नता का कारण बन सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की